हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अमन लावण्या के साथ विधिक के घर पर आया हुआ था। वहाँ वो मिस्टर जिंदल के बारे में पता करने आया था, लेकिन उसे वहाँ सबसे पहले दिव्याना मिली। अमन का शक सही साबित हुआ कि दिव्याना अपने फ़ायदे के लिए अब विधिक का साथ दे रही है, तो उसने उसे जान से मार दिया। दिव्याना की लाश जमीन पर पड़ी थी और अमन भीगी आंखों से उसे देख रहा था। उसके कानों में दिव्याना की हंसी की आवाज़ गूंज रही थी और साथ ही कुछ शब्द भी जो वो उसे अक्सर कहा करती थी। अमन, मैं तुमसे और अपनी जॉब से बहुत प्यार करती हूँ। अगर कभी आगे बढ़ने के लिए मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं अपनी जॉब को चुनूंगी। लेकिन हाँ, अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को चुना तो मैं सब भूलकर तुम्हें ही चुनूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। दिव्याना की बातें अमन के दिल को और तकलीफ़ दे रही थीं। अमन ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, देवी, तुमने अपने लिए कभी कोई हद बनाई ही नहीं। मुझे तुम्हारे इस बिहेवियर से हमेशा से डर लगता था और मेरा डर सही साबित हुआ। दिव्याना की लाश की आंखें खुली हुई थीं। अमन ने नीचे बैठकर उसकी आंखों पर हाथ फेरकर उसकी आंखें बंद की और खुद को संभाला। उसके पास इतना टाइम नहीं था जो वो अपने इमोशंस में बहकर वेस्ट कर सके। अमन अंदर गया तो मिस्टर जिंदल एक कुर्सी से बंधे थे। उनके ड्रेसिंग की हुई थी। उनके शर्ट पर खून के दाग थे जो सूख चुके थे। मिस्टर जिंदल अमन को देखते ही बोले, वो दिव्याना बजाज, शी इज़ अ ब्लडी चीटर। वो विधिक का साथ दे रही थी। आई नो दैट एंड आई किल हर। अमन ने बिना किसी भाव के कहा और मिस्टर जिंदल को खोलने लगा। वो उन्हें खोलते हुए बोला, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वी नीड टू रश। मिस्टर जिंदल ने उसकी बात पर हामी भरी और कुछ सोचते हुए से बोले, आंशी, आंशी कहाँ है? क्या वो सेफ है? वो विधिक के साथ है, डोंट वरी, मैंने उसकी सिक्योरिटी को देख लिया है। अब ये मत कहिएगा मैंने विधिक को आंशी के पास अकेले क्यों छोड़ा। आपको बचाने के लिए मुझे विधिक को बिजी रखना था और आंशी से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता था। मिस्टर जिंदल के बिना पूछे ही अमन ने उन्हें सब बता दिया। अमन ने मिस्टर जिंदल को खोल दिया था। वो दोनों उस रूम से बाहर आए। बाहर मेन डोर की तरफ आते हुए रास्ते में दिव्याना की लाश पड़ी हुई थी। मिस्टर जिंदल ने उसकी डेड बॉडी को बिना किसी भाव से देखा और फिर अमन से कहा, मुझे इसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम खतरे में आ सकते हो। डोंट वरी, मैंने उसका पूरा इंतजाम कर रखा है। मैं बस इस कन्फ्यूजन में हूँ कि इसकी बॉडी को यहाँ से लेकर चलें या नहीं। अमन ने मिस्टर जिंदल की तरफ देखकर पूछा। मिस्टर जिंदल ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, इसे यहीं पड़े रहने देते हैं। विधिक राणा यहाँ आएगा तो खुद ही इसे देखकर सब समझ जाएगा। अमन ने उनकी बात पर हामी भरी। वो कुछ पल और दिव्याना के पास रुकना चाहता था, पर भारी मन से वो मिस्टर जिंदल के साथ वापस बाहर आ गया। दिव्याना भले ही विधिक का साथ दे रही हो या उसने पास्ट में अमन के साथ जो भी गलत किया हो, लेकिन एक सच ये भी था कि वो अमन का पहला प्यार था। वो आगे बढ़ चुका था, पर अपने सामने दिव्याना जी लाश देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और ना चाहते हुए भी पुराने लम्हे उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। अंदर ही अंदर वो ब्रोकन फील कर रहा था। कुछ ही देर में अमन मिस्टर जिंदल के साथ बाहर निकला। उन्हें बाहर लावण्या मिली, जिसने दीप्ति का गेटअप लिया हुआ था। लावण्या ने मिस्टर जिंदल को देखकर राहत की सांस ली। फिर उसने अमन की तरफ देखकर पूछा, अगर मिस्टर जिंदल अंदर थे तो देवी भी अंदर ही होगी ना? क्या विधिक ने उसे मार दिया होगा? वो ठीक तो होगी ना? बोलते हुए लावण्या के शब्द लड़खड़ाने लगे। उसकी भी पलकें नम होने लगीं। लावण्या दिव्याना के धोखे से अनजान थी। एक बहन होने के नाते उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी। अमन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर जिंदल ने मामले को संभालते हुए कहा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, विधिक यहाँ वापस आ जाएगा। लावण्या ने उनकी बात पर हामी भरी और धीरे से कहा, ज़रूर, देवी अंदर नहीं होगी। अगर वो अंदर होती तो अमन ज़रूर उसे साथ लेकर आता। उसने मन ही मन खुद को समझा लिया था। उसके बाद लावण्या प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ी। उसने पुराने पासवर्ड डालकर लिफ्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन विधिक ने लिफ्ट का पासवर्ड बदल दिया था। लावण्या परेशान चेहरे के साथ अमन की तरफ मुड़ी और कहा, हमें मेन लिफ्ट यूज़ करनी होगी, उसने पासवर्ड बदल दिए हैं। कोई बात नहीं, जस्ट कैमरा हैंडल कर रहा है, हमें दिक्कत नहीं होगी। बस तुम मैनेजर को संभाल लेना, मैं मिस्टर जिंदल को लेकर निकलता हूँ, अमन ने जवाब दिया। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो रहा था। अमन मिस्टर जिंदल के साथ बैकडोर से निकल गया तो वहीं लावण्या मामला संभालते हुए मैनेजर के पास चली गई। अंदर अंदर आंशी अभी भी विधिक के साथ ऑफिस में मौजूद थी। मिस्टर सिंह को बाहर गए हुए 20 मिनट हो चुके थे, फिर भी वो अंदर नहीं आए तो आंशी को घबराहट होने लगी। विधिक ने अभी भी आंशी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। आंशी ने विधिक को खुद से अलग करने के लिए कहा, तुम्हें यहाँ आए हुए काफी देर हो गई है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। आंशी ने खुद को विधिक से दूर करने की कोशिश की, लेकिन विधिक ने उसे और भी कसके पकड़ लिया और फिर कहा, दूर जाने की कोशिश मत करो बटरफ्लाई, वैसे भी तुम्हें दिया हुआ टाइम पूरा होने वाला है। इस बार तुमने कोई भी गड़बड़ की तो आई स्वेर एक एक को मार दूंगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। विधिक की बात सुनकर आंशी के दिल में कमकपी सी उठी। अमन के लिए वो खुद को काबू किए हुए थी। फिर उसने धीरे से कहा, अच्छा विधिक, अगर मैं तुम्हारे पास आ गई तो फिर तुम जिस काम के लिए आए हो उसका क्या होगा? तुम अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते, फिर मेरे लिए तुम सब भूल जाओगे क्या? बिल्कुल बटरफ्लाई, देर से ही सही तुम्हें ये बात समझ तो आई कि तुम्हारे लिए मैं सब छोड़ रहा हूँ, विधिक ने जवाब दिया। तो फिर उस आदमी का क्या जिसने तुम्हें वो काम दिया है? कौन है वो जो इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या वो तुम्हें इस तरह बीच में काम छोड़कर जाने देगा? आंशी के दिल में जो भी सवाल उठ रहे थे उसने पूछ लिए। विधिक राणा के आगे किसी की कोई औकात नहीं है, वैसे भी मैंने उसके आदमियों को मार दिया है जिनके जरिए मुझे ये मिशन मिला था। फिर रही बात मास्टरमाइंड की तो वो बहुत पावरफुल है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, विधिक बोल रहा था तभी आंशी ने अचानक कहा, अगर ऐसा है तो फिर उसे भी मार दो ना। अब तक विधिक ने आंशी को कसकर होल्ड कर रखा था, लेकिन आंशी के मुंह से किसी को मारने की बात सुनकर विधिक चौंक गया। उसने आंशी को एक झटके में छोड़ दिया और फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम मुझे किसी को मारने के लिए कह रही हो? तुम ठीक तो हो ना बटरफ्लाई? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली विधिक, तुम चले जाओगे तो वो ये काम किसी और को दे देगा जो मैं नहीं चाहती। जब मैं इतना सैक्रिफाइस करके तुम्हारे पास आ ही रही हूँ तो जाने से पहले मैं अमन की मुश्किलें आसान करना चाहती हूँ। तुम उसे मार दो, अगर तुम्हारे पास उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ है तो वो सबके सामने लेकर आओ ताकि वो सबके सामने एक्सपोज हो जाए। ये सब करने के लिए अमन ने नहीं कहा था, उसने जो भी विधिक से कहा था वो अपने मन से कहा था। विधिक ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, कल शाम तक तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी। इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे वापस आने में 3 से 4 दिन का टाइम लग जाएगा और उसके बाद मुझे कोई बहाना नहीं सुना बटरफ्लाई, तुम मुझे मेरे पास चाहिए होगी, मेरी बटरफ्लाई बनकर। आंशी ने विधिक की बात पर हामी भरी। अमन ने सिर्फ उसे विधिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहा था, लेकिन आंशी अब कुछ और ही कर रही थी, कुछ ऐसा जिसके लिए अमन उसे कभी हाँ नहीं कहता।
That's like my innocent butterfly, बोलते हुए विधिक ने आंशी की नोज पर हल्का सा किस किया। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मिस्टर सिंह वहाँ आ गए। उनके आते ही विधिक ने फिर से प्रोफेशनल बिहेव करना शुरू कर दिया, तो वहीं आंशी ने मीटिंग को आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ अमन मिस्टर जिंदल को लेकर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफिस पहुँच चुका था। वहाँ लावण्या नहीं थी, लेकिन उसके अलावा अमन की पूरी टीम मिस्टर दत्त के साथ मौजूद थी। मिस्टर जिंदल का ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो एजेंसी के हॉस्पिटल में थे। विधिक के घर पर जो भी हुआ अमन ने वो सभी को बता दिया और सब हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। मिस्टर दत्त ने कहा, थैंक गॉड, इस बारे में तुमने पहले ही मुझे बता दिया था कि दिव्याना विधिक का साथ दे रही है और उस हिसाब से मैंने उसी दिन से एक्शन ले लिया, वरना इस वक्त एक सीक्रेट एजेंट को मारने के लिए मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ता। ब्रो, यू आर रियली ब्रेव, मुझे नहीं पता था वो ब्यूटी बीस्ट निकलेगी, जस ने अमन को तरफ देखकर कहा। मिस्टर गुप्ता ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा, बाकी सब तो ठीक है, पर सोचा है लावण्या को इस बारे में कैसे बताओगे, जो भी हो वो उसकी बहन थी। अमन बिना किसी भाव के उन सब की बातें सुन रहा था। मिस्टर दत्त अमन और दिव्याना के रिश्ते से वाकिफ थे और इस वक्त वो अमन की हालत अच्छे से समझ सकते थे। अमन काफी लॉस्ट लग रहा था। मिस्टर दत्त अमन के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आई थिंक तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए, आज का दिन काफी हेक्टिक था। लावण्या को मैं देख लूंगा, तुम आंशी के पास जाओ, आखिरी बार तुमने उसे विधिक के साथ अकेले छोड़ा था। अमन ने बिना कुछ बोले उनकी बात पर हामी भरी और वहां से चला गया। उसका बर्ताव उन सबको काफी अजीब लग रहा था, लेकिन मिस्टर दत्त अच्छे से समझ पा रहे थे। अमन केबिन में से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में आकर सबसे पहले आंशी को कॉल किया। विधिक और आंशी की मीटिंग ओवर हो चुकी थी, इसलिए वो वापस ऊपर के फ्लोर पर बने घर में आ चुकी थी। तुम ठीक हो? आंशी की कॉल रिसीव होते ही अमन ने इतना ही कहा। हाँ सब ठीक है, वो मैं। आंशी अपनी बात पूरी करती उससे पहले अमन ने कॉल कट कर दिया। उसे बस आंशी के ठीक होने की बात सुनाई दी जो कि उसे सुनना था। वहीं अचानक कॉल कट होने पर आंशी ने हैरानी से रिसीवर की तरफ देखकर कहा, हद है इसकी, मेरा कॉल कट कर दिया। कितनी इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही थी कि मैंने विधिक को उसके साथ जाने का प्रॉमिस कर दिया है। जैसे मैंने आज उसे हैंडल किया वैसे आगे भी कर सकती हूँ और उसके खिलाफ हम प्रूफ्स इकट्ठा कर सकते हैं। इसने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी और अब खुद इस तरह बिहेव कर रखा है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। आने दो इसे, मैं बताती हूँ। अमन के अचानक कॉल कट करने पर आंशी गुस्सा हो गई। तो कहीं अमन इस वक्त क्लब में था? वो रेयर की चांस में ड्रिंक करता था, लेकिन आज जो भी हुआ था उसकी वजह से वो कहीं खो सा गया था। वो सब भुलाने के लिए अमन क्लब में एक के बाद एक शॉट लगाए जा रहा था। शार शार।